राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा जय कृष्ण बल राम कृष्ण बल राम जय कृष्ण बल राम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नेताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
की जाए समवेद भक्तवृंद की जाए निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये नाष्टप्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन आज का श्लोक संख्या 38 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ম্যানুয়াল নেই বোর্ড মে লিখনে কা সবকে পাশ তো মোবাইল হ্যাঁ মোবাইল মে নিকালিয়ে 7:14:38 গুগল মে সার্চ কিছে তুরন্ত নিকল যায়গা শ্রীমদ ভাগবতম 7:14:38 ওকে আ গিয়া কৃপায় মেরে পিছে ধরিয়া তেসেব ভগবান রাজামস তারতম্যেন বর্ততে তস্মাৎ পাত্রম হি পুরুষম যাবনাত্মা যথেয়তে তেষেব ভগবান রাজামস তারতম্যেন বর্ততে তস্মাৎ পাত্রম হি পুরুষম যাবনাত্মা যথেয়তে তেষেব ভগবান রাজামস তারতম্যেন বর্ততে তস্মাৎ পাত্রম হি পুরুষম যাবনাত্মা যথেয়তে কৃপায় আপলোক তারা আগে আ যাইয়া প্লিজ কই শ্লোক ওকে আর একবার তস্যৈব ভগবান রাজামস তারতম্যেন বর্ততে তস্মাৎ পাত্রম হি পুরুষম যাবনাত্মা যথেয়তে প্লিজ ট্রাই তস্যৈব ভগবান রাজামস বর্ততে তস্মাৎ পাত্রম হি পুরুষম যাবনাত্মা যথেয়তে বিভিন্ন প্রকারকে শরীর দেব মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি এবং নিঃসন্দেহে ভগবান পরমাত্মা রূপ মে পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান রাজন, হে রাজা, তারতম্যেন অপেক্ষাকৃত কম আর যাদা বর্ততে স্থিত হয় তসমাত ইসলিয়ে পাত্রম পরম পুরুষ হি নিঃসন্দেহে পুরুষ পরমাত্মা যাবান যাহাতক আত্মা জ্ঞান কি সীমা যথা তপস্যা কা বিকাশ ইয়তে প্রকট হয়। তাৎপর্য অনুবাদ তাৎপর্য শিলপ্রপাত দ্বারা, শিলপ্রপাত কি যায় অনুবাদ, হে রাজা যুধিষ্ঠির, প্রত্যেক জীবে স্থিত পরমাত্মা উসকে সমজনে কি ক্ষমতাকে অনুসার উসে বুদ্ধি প্রদান করতে হয়। অতএব শরীর কে অন্দর পরমাত্মা প্রমুখ হতে হয়। পরমাত্মা জীব কে জ্ঞান, জ্ঞান কে অপেক্ষ অপেক্ষ জ্ঞান কে সাপেক্ষ বিকাশ তপস্যা আত্মসংযম ইত্যাদি কে অনুসার উসকে সমক্ষ প্রকট হতে হয়। তাৎপর্য ভগবদ গীতা 15:15 মে কহা গয়া হ্যায় মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম অপহনম চ। পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান আপনি অন্তর্যামী রূপ মে প্রত্যেক জীব কো উসকি ক্ষমতা কে অনুসার বুদ্ধি প্রদান করতে হয়। ইসলিয়ে জীব কো ইস উচ্চ তথা নিম্ন বিভিন্ন পদ পর বিভিন্ন পদ পর পাতে হ্যায়। কই ভি জীব পক্ষী পশুকে শরীর মে স্থিত পরমাত্মা সে উসি দক্ষতাকে দক্ষতা সে আদেশ গ্রহণ নহি কর সকতা জিতনা কি প্রগত মনুষ্য কর সকতা হ্যায়। ইস প্রকার শারীরিক স্বরূপ কি কোটিয়া হতি হ্যায়। মানব সমাজ মে পূর্ণ ব্রাহ্মণ को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होते हैं। अतएव सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान वैष्णव तथा भगवान श्री विष्णु है। दान देते समय मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता से 13:20 में आदेश ग्रहण करना चाहिए। दातव्यम् इति यद्दानम् দিয়াতে অনুপকারিণে দেশ কা দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানম সাত্ত্বিকম স্মৃতম। যদান কর্তব্য সংস্কার উচিত সময় তথা স্থান পর যোগ্য ব্যক্তিক তথা বদলে কি ভাবনা কে বিনা দিয়া যাতা হয় উচে শতগুণী দান কহা যাতা হয়। মনুষ্য কো চাইয়ে কি ব্রাহ্মণ তথা বৈষ্ণব কো দান দে, কিউকি ইস প্রকার পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান কি পূজা হো জাতি হ্যায়। ইস প্রসঙ্গ মে শিলা মধ্যাচার্য কি টিকা হ্যায়। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু ন বিশেষ হরেক চিত ব্যক্তি মাত্র বিশেষেন তারতম্যম বদন্তি বদন্তি চ। ব্রহ্মা সে লেকর চিট্টি তক সবই প্রাণী পরমাত্মা দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ঈশ্বর সর্বভূতানম হৃদেশে অর্জন তিষ্ঠতি। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনা মে প্রগতি কে কারণ ব্যক্তি বিশেষ কো মহত্বপূর্ণ মানা যাতা হয়। অতএব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মহত্বপূর্ণ হয় আর পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান ভগবান পরমাত্মা সর্বোপরি হয়। অমজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরোন্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোবিষ্টম স্থাপিতম যেন ভূতলে స్వయం రూపం కదా మహ్యం దదాతి శపదాంతికం. వందే అహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురును వృష్ణావంశ శ్రీరూపం శాగ్రజాతం శౌగున రఘునాథం వితాంతం సజీవం సాదైతం సావధూతం పరిజనసైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధకృష్ణ పాదన్ శౌగున లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం చ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత శామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది వాశ్చతుర్దశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపిక కాంత శ్రీరాధ కాంత నమస్తుతే తాప్త కాంచన గౌరాంగి శ్రీరాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. నమ మహావదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరత్తిశే నమ. వంచాకల్పతరువశ కృపాసింధుయవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది శ్రీ గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగులం గయతి గిరిం జత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుదినతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. హరే కృష్ణ. तो सुबह की भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है जो नए नए आए हैं. सांडे बहुत नए भक्त आते हैं तो सबको हार्दिक स्वागत है इस्कॉन वृंदावन की ओर से. तो यहाँ पर नारद मुनि ने बता रहा है आदर्श पारिवारिक जीवन. तो यहाँ पर रेगुलर श्रोता है जो रेगुलर श्रवण करते हैं तो जो आज नया है आए हैं उनके लिए मैं शुरू से एक बार ओवरव्यू देता हूँ पूरे चैप्टर की. ठीक है. तो नारद मुनि शुरू में ये युधिष्ठिर महाराज ने क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर. गृहस्य अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन यतोचितः वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनिन. श्री नारद मुनि ने ये है उत्तर दिया है. पहली क्वेश्चन पूछा है युधिष्ठिर महाराज गिरस्थ एताम पदवीम विधिना जेनो चांस जाजा देव ऋषय ब्रीही मादृश गृह मुरोधी. महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा नारद मुनि से हे स्वामी मैं हे देवर्षि कृपा करके यह बतलाए कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान रहित जीवन लक्ष्य के ज्ञान रहित ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते. ये किसका प्रश्न था? युधिष्ठिर महाराज जी का प्रश्न. तो सारे इस संसार में कितना आश्रम है? चार आश्रम है. तो चार आश्रम से ज्यादा आप कौन सा आश्रम में रहने वाले व्यक्ति? गृहस्थ आश्रम में. तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं एक गृहस्थ है इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा. ज्यादा से ज्यादा आदमी का कल्याण के लिए क्वेश्चन पूछा. गृहस्थ में रहने वाले जो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी से जल्दी आत्म साक्षात्कार करके भगवत धाम कैसे जा सकते, क्योंकि उनके पास तो इतना सारे वेदों का ज्ञान नहीं है. तो सरलता से बताइए. तो यहां पर नारद मुनि ने उत्तर देते हैं हे राजन जो जोन घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने हेतु कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास करने की जगह इन फलों को वासुदेव श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए. इस जीवन में वासुदेव को किस प्रकार प्रसन्न किए जाए इसे भगवत भक्त की संगति के माध्यम से भोली भांति सीखा जा सकता है। साक्षात उपासित महामुनिन, भगवत भक्त के संग से ही इसको सीखना है। किस प्रकार हमें वासुदेव को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। भागवत में बताते हैं, अतो पुंबी दिजो श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग न उत्पादय रतिम श्रम ये वो ही के बोलम। हम जिस आश्रम में रहें, जिस कार्य में रहे, अगर हमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के चरण में अगर रोती उत्पन्न नहीं हुआ तो हमारा ये वृथा है। इसलिए नारद मुनि यह बताता है, बता रहा है कि आप मुनि से सीखो, साधु से सीखो, साधु के पास जाओ और उनसे सीखो किस प्रकार भगवान वासुदेव को गृहस्थ में रह के भी प्रसन्न कर सकते हो। उनके संगति में रहो हमेशा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो नारद मुनि आगे और बताते साधु का पास जाके क्या करना है। तो यह बताते गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के क्रियाकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से उसी प्रकार विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य सपनों से विरक्त हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया बता रहे नरद, मतलब हमें साधु पुरुषों के पास जाना चाहिए। तो ये भक्ति का प्रगति मार्ग में शुरू में आए साधु संग, पहले श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होने से कोई साधु के पास नहीं जाएंगे। तादो श्रद्धा तो साधु संग, और साधु संग में क्या होगा आगे जाके भजन क्रिया। साधु बताएंगे जिस प्रकार भजन करो, हरिनाम करो, तो भजन क्रिया। तो यहाँ पर साधु से श्रवण की महत्वपूर्ण बताया जो कितना महत्वपूर्ण है। साधु संग करना, उनसे श्रवण करना। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, हम इस संसार में एक जंगल में है, संसार रूप जंगल में है। संसार एक जंगल है, मतलब एक जंगल के अंदर से मान लो आप बन है, घना घना फॉरेस्ट है, जंगल है। उस जंगल के अंदर से आप अकेला जा रहे और डकैत आया आपको पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? जोर से चिल्लाना पड़ेगा, बचाओ बचाओ। डकैत आके, जो डाकू होता है जंगल में, वो आके आपको बांध दिया पैर के साथ। तो आप अगर चिल्लाओगे तो राज पुरुष आएंगे, राजा का सैनिक आएंगे, तो डकैत छड़े भाग जाएंगे। तब जाके आप उस जंगल जंगल में उस विपद से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो ये उदाहरण देके नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं जो हम सारे इस संसार के जंगल में है, फंसे हुए है। तो बताते संसार बाटुआरे काम फांसी बांदी मारे, पुकार करो हरिदास करो भक्त संग प्रेम कथा रसरंग, तबे हय विपद विनाश। तो संसार बाटुआर, बाटुआर माने डाकू है, डकैत। संसार का मतलब क्या है? अलग अलग जगह में अलग अलग उदाहरण दिया है। संसार जो सम्यक रूपे न सरोती इति संसार, जो हमेशा डिग्रेशन होता है, वो संसार है। संसार मतलब मैं और मेरा। संसार का अर्थ है मैं और मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। आप जिस घर में है आप देखिए, वहां पर पहले तो मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं हूं, मेरा है, यही है संसार। जो इससे मुक्त हो गया वो संसार से मुक्त हो गया, मैं मेरा से जो मुक्त हो गया। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जंगल के अंदर से जा रहा है और उस जंगल में हर वृक्ष में लेकर है मैं मेरा, मैं मेरा, और डकैत आया जंगल में, डकैत आया और वो डकैत क्या कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद आके बांध दिया आपको। उस पेड़ में जिस पेड़ में मैं मेरा लिखा है अच्छे से बांध दिया। तो जंगल में पहले बताया जो उसको पुकारना पड़ेगा बचाओ बचाओ करके, तो राजा का सैनिक आएगा तो बच जाएगा। तो यहां पर किसको पुकारना है, हम जिस गृहस्थ संसार में फंसे हुए हैं, मैं और मेरा में, और जिसमें काम क्रोध आदि लोभ मोह मद मत्सर इच्छा देश हिंसा से भरे हुए है, उस शत्रु का बीज में हम फंसे हुए हैं। तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर किसको पुकारने बताया, फिर से सुनिए, संसारो बाटुआरे काम फांसी बांधी मारे पुकार करो हो हरिदास। किसको पुकारना है, हरिदास कौन है, हरिदास कौन है, हरि का दास, भगवान के भक्त, भगवान तो बुलाने से नहीं आएंगे ना, तो भगवान को भक्त तो अवेलेबल है, तो भगवान का भक्त को बुलाइए। अगर आप उस संसार रूप जंगल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भक्त को बुलाइए। और यहां पर नारद मुनि भी वही बताया भक्त संग करने के लिए, जे पुकार करो हरिदास, इसका मतलब हमें भक्त को बार बार बुलाना है। और भक्त आएगा तो क्या होगा, करो हो भक्त संग प्रेम कथा रसरंग तबे हो विपद विनाश। तो भक्त को बुलाने से भक्त जब आएंगे तो क्या होगा, हरि कथा प्रेम कथा, ये जो आंदोलन है हमारा, जो आंदोलन है ये प्रेम आंदोलन है, इस्कॉन जो है ना महाप्रभु के आंदोलन है प्रेम आंदोलन। तो प्रेम कथा, महाप्रभु आके प्रेम वितरण किया, ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम वितरण किया। तो उस प्रेम आंदोलन में अगर हम भाग लिया और उस प्रेम कथा रसरंग महाप्रभु के जो लीला चैतन्य महाप्रभु की लीला कृष्ण की लीला ये सब हम श्रवण किया, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये जो डाकू है जो हमें पकड़ लिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब हमें पकड़ लिया अच्छे से, तो ये सब भाग जाएंगे सारे दस्यु, ये सारे जो डाकू है ये भाग जाएंगे। और भाग जाएंगे तब जाके हमारा विपद जो संसार में भटकने का 84 लाख जन्म में भटकने का जो विपद है उससे हम मुक्ति पाएंगे। तो नारद मुनि यहाँ पर बताते हैं जो गृहस्थ भक्त को हमेशा बार बार भक्त को बुलाना चाहिए और भक्त संग करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, है ना, कैसे भी ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन में रत रहना चाहिए। तो यहाँ पर आगे और बताया जैसे मनुष्य को चाहिए कि हिरण ऊंट गादे बंदर चूहे सांप पक्षी तोता मोक्षी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समतुल्य आचरण करे। ये किसके लिए, सब ये गृहस्थ भक्त के लिए बता रहा है। मैं एक बार देखा, एक्चुअली इस भक्ति जीवन में मैं कैसे आकृष्ट हुआ, ये भी एक भक्त की महिमा देख के भक्ति जीवन में आकृष्ट हुआ। मैं उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर का पीछे मैं जब स्टूडेंट था तो वहाँ गया, तो उस घर में मैं रहने लगा। वहाँ पर कम से कम 25-30 साधु लोग रहते, और वहाँ पर एक जो हेड है मेन मालिक है वो भी भक्त है। वो क्या करते हैं, उनका जितना जमीन है सब दे दिया, कुछ शादी भी नहीं किया, घर को मंदिर बना दिया, और घर में सब साधु सेवा होता है, कीर्तन होता है 24 आवर्स, और प्रसादम का टाइम हो गया, सबको प्रसाद में बैठा दिया। और जो मालिक है जो कितना सौ बीघा जमीन का मालिक है, ब्रह्मचारी है, और वो जाके क्या करेंगे, रास्ता में जाएंगे बुलाएंगे, कोई भूखा है, अगर एक व्यक्ति भूखा पाकड़ के नहीं ले आ पाया तब तक ये लोग सब बैठे रहेंगे, हम सब बैठा रहना पड़ेगा, खा नहीं सकते, शुरू नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को बुला के लाएंगे तब जाके वो बैठेगा, उनको सर्विस पहले किया जाएगा, उसके बाद सबको प्रसाद शुरू होगा। तो ये मुझे बहुत आकृष्ट किया था। तो एक भक्त की महिमा देखिए, यहां पर बताया भक्त मैंने एक गृहस्थ भक्त को वो तो भले वो गृहस्थ नहीं था, वो तो अपना घर को ही वो मंदिर बना दिया, लेकिन फिर भी वो घर में था। तो यहां पर बताया कि एक चेतना में तो हमें सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ब्राह्मण गोपी हस्ती ने सुनी चैव सपाकाच पंडिता समदर्शिना, एक गृहस्थ भक्त को पंडित होना चाहिए, आत्मतत्वविद, आत्मा के स्तर में सबको सम्मान करना चाहिए, अलग अलग रेस्पेक्ट। तो देखिए प्रभुपाद जी एक जगह में बताते हैं, जैसा कि यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताया आज का श्लोक में, हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में स्थित परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, अतः शरीर के अंदर परमात्मा प्रमुख होते हैं। परमात्मा जीव के ज्ञान के सापेक्ष विकास तपस्या आत्मसंयम इत्यादि के अनुसार उसके समक प्रकट होते हैं। ये परमात्मा कौन है? कृष्ण, चेतो गुरु, चेतो गुरु। हमारा कितना गुरु है? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चेतो गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु। तो चेतो गुरु स्वयं परमात्मा, चेतो गुरु अंदर से प्रेरणा देते हैं शरीर के अनुसार। अगर कोई मनुष्य शरीर में है तो उसको उसी प्रकार प्रेरणा बुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन कौन है चेतो गुरु का बात मानने वाला? कोई नहीं मानता है। हम अपना आंख, अपना जिह्वा, अपना कान, अपना मन, इसी का ही बात मानते, क्योंकि इसके वश में है हम, मन बुद्धि और इंद्रिया के वश में है, विशेष करके मन और इंद्रिया के वश में है, इसलिए हम इनकी बात मानते। चेतो गुरु बार बार वहां से गाइड करते रहते, अरे बेटा अभी वह सत्संग हो रहा है, वहां जा, ये गलत मत कर, सिनेमा में मत जा, लेकिन हम मानते नहीं। इसलिए क्या होते हैं? स्वयं भगवान शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में सामने प्रकट होके डांडा से पिटाई करके सिखाता है। और अखंड गुरु तत्व है स्वयं बलराम, बलराम है अखंड गुरु तत्व। दो प्रकार के भगवान है, एक है सेव्य भगवान, वो कौन है? कृष्ण के डाउट है क्या? एक है सेव्य भगवान, सेव्य भगवान है स्वयं कृष्ण, और एक है सेवक भगवान, और सेवक भगवान कौन है? बलराम। तो बलराम कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ प्रकट किया, आसन भूषण पादुका जो भी चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए, जितना भी विस्तार आप देखते हैं वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। तो बलराम जी मयूर बनाया कृष्ण के प्रसन्नता का विधान के लिए, बंदर बनाया वृंदावन में ना, जितना भी पेड़ पौधा जो भी है, जो भी हम सृष्टि देखते हैं सब बलराम जी ही बनाया। किसके लिए? कृष्ण सेवा के लिए। हमें कौन बनाया? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें भी बलराम जी ही बनाया, और हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण सेवा है। हमारा जीवन का उद्देश्य पता चल गया, लेकिन हम माया की सेवा में फंस जाते, चंगुल, माया की चंगुल में फंस जाते। इसलिए भगवान वही बलराम जी परमात्मा के रूप में अंदर से गाइड करते, चेतो गुरु अंदर से गाइड करते, जे कृष्ण की भक्ति करो, भजन करो, लेकिन हम मानते नहीं है। कभी कभी विशेष करके भारतीय बाई बात आर स्पिरिचुअलिस्ट, बाई बात जानता है हम शरीर नहीं आत्मा है, बाई बात जानता है महामंत्र महाशक्ति कलिजुग का युग धर्म जो नाम के नाम आधारा, बाई बात जानते हम, लेकिन जानते हैं मानते नहीं है, ये स्थिति हो गया, जानता है मानता नहीं है। तो सब लोग इसी स्थिति में, क्योंकि माया का चंगुल में, कृष्ण भूली जाई जी भगवान चा करे, निकटस्थ माया तरे चापटिया धरे। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण और बलराम दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा, प्रभुपाद जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? कृष्णा और बलराम में अंतर क्या है? बोला एक ब्लैक है एक व्हाइट है, यही अंतर है। नहीं, प्रभुपाद जी बताए एक व्हाइट है एक काला है, यही अंतर है, काला घोड़ा। फिर एक भक्त ने बताया, प्रभुपाद जी लेकिन बलराम वो सारे बल के सोर्स है, वो ज्यादा बलवान है। बोला प्रभुपाद जी, बोला अगर बलराम सबसे ज्यादा शक्तिमान है बलवान है तो उनको खड़ा होने के लिए कृष्ण का सपोर्ट क्यों लेना पड़ा, है ना? कृष्ण का सपोर्ट लेके खड़ा हो रहा है ना। कृष्ण है शिव भगवान, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, स्वयं भगवान। तो कृष्ण ही बलराम को बनाए, मतलब कृष्ण से आया। तो तो ये जो बलराम है, बलराम हमें बनाया कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन हम कृष्ण को भूल जाते, हम कृष्ण सेवा भूल के माया सेवा में फंस जाते। चेतो गुरु यहां से गाइड कर रहा है लेकिन चेतो गुरु का बात नहीं मानते। तो वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, वही बलराम गुरु रूप में भ्रमण करते, हमें गाइड करते कृष्ण की सेवा करना। तो ये जो कृष्ण सेवा हमारा जीवन का उद्देश्य है, और यहाँ पर ये महाप्रभु का जो आंदोलन है, आप देखिए महाप्रभु का आंदोलन में आज एक भक्त बोल रहे थे कि भक्त में आपस में प्रेम नहीं है, इसलिए कई कई भक्त भक्ति मार्ग में उतना रुचि नहीं दिखाते, चला जाते। आंतरिकता नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, लेकिन ये प्रेम के आंदोलन है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया है, हम शुरू में एक बच्चा जब जन्म लेता है वो पहली प्रेम किसको करना सीखता है? अपना माँ को। उसका बाद और भी उसका बच्चा लोग बढ़ जाता है, तो प्रेम का परिधि उसका बढ़ते जाता है, उसका प्रेम का परिधि बढ़ता है, पूरा देश को, पूरा जाति को, पूरा मानव जाति को। लेकिन उसका प्रेम और फिर भी संपूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण रह जाता है। जब कृष्ण के चरण में पहुँचते हैं तो वो प्रेम पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण के चरण में प्रेम पहुँचाने के लिए कैसे कृष्ण को प्रेम करना है, तो उसको सिखाने के लिए स्वयं बलराम गुरु के रूप में आते हैं हमारे पास। वो सिखाते हैं कैसे प्रेम शुरू करना है, डायरेक्ट कृष्ण की प्रेम को कैसे शुरू करना है। एक तो है आरोह पंथ, अब जाओ इस प्रकार घूम घूम के, लेकिन स्वयं प्रभुपाद जी जो हमें सिखाया, गुरुवर्ग आके सिखा रहा है। तो हम पहले प्रेम करना सीखते कहा, किसको? भक्ति में आके भक्तों को, भक्तों से हमारा रियल आत्मीयता शुरू होता है। हमें ब्रॉड माइंडेडनेस, हमारा अंदर जो काम क्रोध देश हिंसा विद्वेष ये सब है, जिसके कारण हम प्रेम नहीं कर पाते, हम देश करते। तो पहली भक्तों में प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहां पर जैसे कि गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा ना, हमें 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 पहले सिखाया गया प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र सीखो, प्रभुपाद के प्रति निष्ठा बढ़ाने का सिखाया गया ना। तो प्रभुपाद के प्रति अगर हमारे निष्ठा बढ़ा, भक्ति कर जप करते करते धीरे धीरे प्रभुपाद की महिमा जानते जानते, तो ये प्रभुपाद की संस्था में जितना सारे भक्त है जो प्रभुपाद का सेवा में समर्पित है, ये सबको हमें प्रेम करना है, है ना? इतना तो है ना प्रभुपाद का संस्था में सबको हमें प्रेम करना है। कोई वैष्णव को हम देश नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते, विद्वेष नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, अगर हम देश किया, हिंसा किया, विद्वेष किया, मैं और मेरा करना शुरू कर दिया, तो प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा, इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी, इफ यू वॉन्ट टू लव मी, देन शो योर लव बाई कोऑपरेटिंग योर एमंग योर सेल्फ। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपस में अपने आप सब मिलके कोऑपरेट करके रहो। तो परमात्मा रियलाइजेशन वो रियलाइजेशन है जिस रियलाइजेशन में हम देख सकते हैं समस्त जीव में परमात्मा रूप में भगवान है, समस्त जीव को सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। इसलिए जो परमात्मा रियलाइजेशन होता है, द सुपरसोल, द रियलाइजेशन ऑफ द सुपरसोल एस्पेक्ट, उसमें क्या है, सब जगह में परमात्मा विराजमान है, सब जीव में परमात्मा विराजमान है, इसलिए सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको सम्मान करना है। किसी को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो रियल प्रेम भावना, ये धीरे धीरे वर्धित होते जाता है, वर्धित होते जाता है। और एक परमात्मा रियलाइजेशन, जैसा कि हम ये शिखा रखते, कोई एक भक्त मुझे पूछा एक बार, प्रभु हम शिखा क्यों रखते? तो शिखा रखते इसलिए कि सबको मैं सम्मान कर पाऊ। ये कैसे आंसर हुआ? सबको रेस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये शरीर एक मंदिर है और मंदिर में भगवान विराजमान है ना। तो हम अपना शरीर को मंदिर के रूप में सजाते हैं और इसमें भगवान जी विराजमान है परमात्मा के रूप में, ये एक मंदिर है। उसी प्रकार समस्त जीवात्मा भगवान की एक एक मंदिर है जो परमात्मा उसमें विराजमान है। इसलिए सबको रेस्पेक्ट करना है, सबको सम्मान करना है। इसलिए जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन यह होते धर्म आर नहीं सनातन। तो जीवे दया का मतलब क्या है? वाणी से किसी को आघात नहीं करना। वाणी सबसे बड़ा आघात वाणी करता है। वाणी उसके बाद क्या है? काय, शरीर के द्वारा शरीर से किसी का आघात करना, ये हिंसा हुआ ना। आजकल कसाईखाना चारिवर खुल दिया, जीवहिंसा हो रहा है। तो कोई हिंसा नहीं करना, मतलब शारीरिक रूप से भी किसी को आघात नहीं करना। और क्या क्या? वाणी से भी किसी को आघात नहीं करना। बकासुर देखा वृंदावन में? बकासुर जिसका बहुत लंबा चोच, यहीं पर बैठ के बहुत दूर के किसी को आघात कर सकता है ना। बकासुर कृष्ण को उसी चोच से बहुत दूर में कृष्ण है, कृष्ण को पकड़ के आघात कर रहा है बकासुर। अभी कलयुग में सबका हाथ में ये है बकासुर। या व्हाट्सएप में मैसेज करके हम यहां से अमेरिका तक किसी को आघात कर सकते है ना, वाणी के द्वारा। ठोट लंबा है, किसी को भी आघात कर सकते। तो बकासुर छोटा मोटा अभी चल, चोच बहुत लंबा हो गया। सबको आघात करने के लिए हम, और दूसरा को आघात करके वाणी से हो, शरीर से हो और मन से किसी का अकल्याण सोच के हमें बहुत आनंद मिलता है। तो भक्ति में आप देखिए, कुत्ता को, बिल्ली को, हर प्राणी को हमें किस प्रकार, यहाँ पर नारद मुनि बताया, रेस्पेक्ट करना है, उनको सम्मान करना है, उनको खिलाना है, उनको कभी आघात नहीं करना। सबको बराबर पंडिता समदर्शिना, कि परमात्मा रूप में सब में भगवान है। जान बुझ के भी एक किसी को मारना नहीं, हत्या नहीं करना। एक प्राणी को हम प्राण नहीं दे सकते, तो उसको हत्या कैसे कर सकते? और मन से भी किसी का अकल्याण नहीं सोचना। एक बार मैं क्वेश्चन पूछा था मेरा गुरु महाराज श्री सुभाक्षामी गुरु महाराज को, जैसा कि मैं उनको क्वेश्चन पूछा, जे मैं किसी को आघात नहीं करता हूं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं प्रतिवाद करूं? क्योंकि मेरा भावना है प्रतिवाद करना। तो मैं सोचा परमिशन देगा तो देख लेंगे लेकिन गुरु हैवी होते, उन्होंने बताया नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम्हें विश्वास है भगवान परमात्मा के रूप में सबके अंदर बैठे हैं? बोला हाँ विश्वास है। तो जाओ कृष्ण बलराम को जाके बोलो, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? उनको जाके प्रार्थना करो, जो तुम्हें अकल्याण करता है, जो तुम्हें कष्ट पहुंचाता है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप परमात्मा रूप में उनके अंदर बैठे हो, आप उनके कल्याण कीजिए, आप उनका कल्याण कीजिए। ये सबसे कठिन है, बहुत बड़ा कठिन आदेश था। सच में जो आपको कष्ट दिया, थप्पड़ मारा, आप वो भगवान को जा प्रार्थना करो, प्रभु आप उनका कल्याण कीजिए, ये क्या संभव है? मैं बोला ये बड़ा कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बड़ा कठिन है। मतलब इसलिए तो मैं गुरु गुरु आज बोला, इसलिए तो हेवी आदेश करेंगे। तो ये विश्वास परमात्मा सबके अंदर बैठे है, और मत्तो श्रुति ज्ञान अपोहनम च, वही से सब कुछ आता है, मत्तो श्रुति ज्ञान अपोहनम। तो तो भगवान वहां पर बैठे हैं परमात्मा के रूप में। अगर कोई मुझे कष्ट दे रहा है तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान अंदर में वो फिक्स कर देंगे ना कोई भी प्रॉब्लम उसका अंदर का प्रॉब्लम अंदर में ही फिक्स कर देंगे और मुझ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा। और ये सांस में काम करता है, ये प्रैक्टिकल देखा सांस में काम करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना जो हमें अकल्लन कर रहा है, लेकिन हम खुद किसी का अकल्लन ना सोचे, किसी का अकल्लन ना भावे, क्योंकि प्रेम का आंदोलन है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। जब प्राचीन बहरी की 10 पुत्र प्रसेता वो समुद्र के नीचे में 10,000 साल तपस्या किया और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होके बता रहा है जो मैं इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि तुम 10 नहीं देखा, मैं एक देखा और 10 इतना कोऑपरेट करके एक दूसरा के से सहयोग का भावना रख के मेरा भक्ति साधन किया है, जिसका कारण मैं प्रसन्न होके तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुआ। तो कलिजुग है, कोऑपरेट करना एडजस्ट करना बड़ा कठिन हो रहा है, धीरे 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 कठिन होते जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को अंदर वो गुणावली डेवलप करना है, वैष्णव गुणावली जो प्रभुपाद चाहते हैं। कम से कम भक्त को मध्यम अधिकारी में आना चाहिए, एक भक्त को कम से कम। क्या प्रसादम टाइम हो गया क्या? क्योंकि वृंदावन का ये रीति है, पुराना रीति है, प्रसादम टाइम हो जाता है तो आके थाली बजाता है। क्योंकि पहले जमाना में इसका पहली मतलब यहां से बहुत साल पहले इसी हॉल में ही प्रसाद होता था, यही पर प्रसाद होना, उधर वो हॉल बना नहीं था तो इसी में प्रसाद होना है तो वहां पर थाली बजा देता था, तो स्पीकर को तब बंद करना पड़ता था। तो एनी क्वेश्चन एनी कमेंट्स, किसी का कोई प्रश्न है? यस, हाँ प्रश्न क्या है? माइक दे दो, एक मिनट माइक दे रहे, सब लोग को सुनने दो प्रश्न।
एक माता जी ने प्रश्न किया कि हरियाली की इसका क्या महत्व है, तो मुझे जवाब देना नहीं आया तो आप दे दीजिए।
हरियाली ये झूलन यात्रा, ये भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा इसी महीना में, तो अभी आज से शुरू हुआ था झूलन यात्रा, ये 5 दिन, इसका मतलब बहुत जल्दी बलराम जयंती आ रहा है। झूलन यात्रा मतलब बलराम जयंती का संकेत है। तो झूलन यात्रा है भगवान श्री कृष्ण की जो झूलन लीला है, अरे झूलन लीला बहुत गहरा लीला है भगवान की, क्योंकि सारा वृंदावन आप देखिए जून जुलाई अगस्त जून जुलाई मई जून जुलाई ये 3 महीना 4 महीना वृंदावन में कई भी वृक्ष में पत्ता नहीं रहता है, लगता है सारे पेड़ मरा हुआ है, सूखा हुआ है। और उसके बाद बारिश का सीजन शुरू होता है और वृंदावन हरा भरा हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है, सारे कुंज गोली रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। और उस कुंज गोली में फिर कुंज लीला शुरू होता है कृष्ण की। तो ये पहली है झूलन यात्रा, बारिश का सीजन के बाद वृंदावन में जब हरियाली हरा भरा हो जाते वृंदावन, तो ये झूलन यात्रा की शुरुआत है। और झूलन यात्रा मतलब बलराम जयंती आगे आने वाला, आगे बलराम जयंती, उसके बाद जन्माष्टमी राधाअष्टमी सब आने वाला है। तो ये संकेत है वृंदावन में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। आप बहुत भाग्यशाली है सब लोग, वृंदावन में फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ, लेकिन मैं तो दुर्भागा हूँ, अभी भागना पड़ेगा मुझे वृंदावन से। एक्चुअली वृंदावन में जो रहता है उनको हर दिन ये फेस्टिवल है वृंदावन में, हर दिन फेस्टिवल है। इस वृंदावन के बाहर, मैं कई साल बाहर रहा, वृंदावन के बाहर कब झूलन यात्रा है, कब हरियाली है, हरियाली है, हरियाली नाम भी नहीं जानता इस्कन के भक्त बाहर के, जो हरियाली क्या है उस नाम भी नहीं जानते, और दूसरा इस्कन मंदिर में भी, लेकिन वृंदावन में आप देखिए स्पेशल है, हरियाली आ गया, हरियाली फेस्टिवल। तो ये हरियाली फेस्टिवल ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल है, और झूलन यात्रा हरियाली में पूरा वृंदावन के देखो आज कितना सारे पेड़ का जो पत्ता वो आके कुंज बना दिया वृंदावन इस्कन मंदिर में, आप देखो पूरा डेकोरेशन कर दिया। आज जो शाम का टाइम जो झूलन में कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर बैठेंगे, सही राधा श्याम सुंदर बैठेंगे ललिता विशाखा के साथ, तो आप वो जो झूलन को आप देखोगे पूरा हरा भरा है, लगता है कुंजों के अंदर राधा श्याम सुंदर झूल रहा है, पूरा आप अनुभव करोगे। तो यहाँ का पेड़ पौधा भी कृष्ण सेवा में लग जाता है, एक एक फूल पत्ता पेड़ पौधा सब कृष्ण सेवा में लगता है यहाँ वृंदावन में। हरे कृष्णा।